प्रवचन 20 4 2013 परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा दिया गया नई दिल्ली में राम नवमी के अवसर पर। हरे कृष्णा।
वंदे हम श्री गुरु सीता पद कमलम श्री रूपम सगाजतम सागना लगना तर्मितम संत देवम सद्वेतम सुवधूतम परिजना सहितम कृष्णा चैतन्य देवम श्री राधा कृष्णा पदा सहागना ललिता श्री शाखायतम सर हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीनाथ राधा कंद नमोस्तुते तप्त कंचन घोरवी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरे वंचा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव चतुर्भुज भक्तवृंद
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम।
हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। भूति गर्व और मैं नाटक देखोगे तो जैसे आप जानते हो आज बहुत ही शुभ दिन है और रामनवमी के इस शुभ अवसर पर आप सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त कीजिए। तो आज है रामनवमी। यदा यदा ही धर्म से किनारे भारतीय भारत भगवान कहते हैं कि वो अलग अलग समय में प्रकट होते हैं और किस लिए पारितनाय साधु नाम विनिश्चित दुष्कृतम धर्म संसपनाथ आया संभवामी योगी। भगवान प्रकट होते हैं धर्म के नियमों की स्थापना के लिए। तो त्रेता युग के आरंभ में भगवान प्रकट हुए रामचंद्र जी के रूप में और श्रीमद् भागवतम के नौवें स्कंद में दो अध्याय हैं केवल जहाँ की भगवान राम की लीलाओं का वर्णन है। वैसे तो भगवान राम की लीलाओं का वर्णन बड़ी गहराई से वाल्मीकि जी के रामायण में प्राप्त करते हो पर श्रीमद् भागवतम में केवल दो अध्याय हैं जहाँ भगवान राम की लीलाओं के विषय में पढ़ते हो। तो श्रीमद् भागवतम के नौवें स्कंद में श्रीदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान राम प्रकट हुए अपने भाई लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ और ये चार के चार क्या हैं विष्णु जी हैं विष्णु तत्व हैं जीव तत्व है। दूसरे शब्दों में परम भगवान प्रकट हुए और भगवान प्रकट होते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। आप और हम जन्म लेते हैं कर्मों के अनुसार हमारे कर्मों द्वारा निर्णय किया जाता है किस प्रकार का जन्म कहाँ हमें प्राप्त होगा। पर परम भगवान अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट होते हैं और भगवान राम के भाई प्रकट हुए इस पृथ्वी पर दशरथ महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में और प्रकट हुए क्योंकि देवताओं ने प्रार्थना की थी कि परम भगवान आप प्रकट हुए इस पृथ्वी पर। आप भागवत में पढ़ते हो भगवान कृष्ण के भी प्रकट होने से पहले देवताओं ने प्रार्थना की थी और आप चैतन्य चरितमृत में पढ़ते हो कि चैतन्य महाप्रभु जी के प्रकट होने से पहले अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर ने बड़ी गहरी प्रार्थना की थी कि भगवान स्वयं प्रकट हों पृथ्वी पर पंतों का उद्धार करने के लिए। तो इसी प्रकार चैत्य युग में देवताओं ने भी प्रार्थना की कि भगवान राम को प्रकट होना चाहिए। भगवान राम उनके भाई सब के सब हैं, विष्णु तत्व स्वयं भगवान है। अद्वैतम अच्युत मनाली अनंत रूपम, भगवान अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं, पर भगवान के जो प्रमाणिक अवतार हैं उनके विषय में हम ज्ञान वैदिक शास्त्रों में प्राप्त करते हैं। ये नहीं कि कोई ये कहे कि मैं भी भगवान का अवतार हूँ, नहीं, अवतारों का वर्णन भगवतम में है। भगवतम के दूसरे स्कंध में संक्षिप्त रूप में प्रसिद्ध अवतारों का वर्णन है, और आगे के स्कंधों में और गहराई के साथ इन अवतारों की चर्चा की जाती है। तो भगवान राम के विषय में अनेक ग्रंथ प्रकाशित हो चुके थे। भगवतम में श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं केवल संक्षेप में भगवान राम की लीलाओं का वर्णन कर रहा हूं, क्योंकि उनकी लीलाओं का वर्णन हो चुका है अनेक संतों के द्वारा, खास करके वाल्मीकि के द्वारा, जिन्होंने बड़े गहराई के साथ भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया है। भगवान जब प्रकट होते हैं पृथ्वी पर तो अपनी अद्भुत लीला प्रकट करते हैं। ये नहीं कि कोई व्यक्ति दावा कर ले कि मैं भगवान हूँ, वो अद्भुत लीला प्रकट करते हैं जिसकी तुलना कोई साधारण व्यक्ति न कर पाया है न कर सकेगा। तो उदाहरण के लिए भगवान ने बड़ी सरलता के साथ एक भारी धनुष जिसे 300 व्यक्ति उठा सकते थे, जिसे उठाने के लिए 300 व्यक्तियों की आवश्यकता थी, उन्होंने इतनी सरलता से उसे तोड़ा जैसे एक छोटा हाथी एक कन्ने को तोड़ता है। भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। कई बार हम भगवान को हमारे भौतिक बुद्धि द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। अगर भगवान हम आप समझना चाहते हो तो सेवो मुके ही जीवा दो। सेवा एक माध्यम है जिसके द्वारा आप भगवान के अनेक गुणों को समझ सकते हो। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान राम के विषय में अनेक ग्रंथ प्रकाशित हो गए हैं, तो मैं केवल संक्षेप रूप में भगवान राम की लीलाओं का वर्णन कर रहा हूँ, और ये आप प्राप्त करते हो भगवतम के प्रॉमिस में। तो भगवान राम ने धनुष को छोड़ा। जब उनके पिता दशरथ ने बेटे से कहा तुम राज्य छोड़ दो, वनवास में जाओ 14 साल के लिए। महाराज दशरथ की 3 पत्नियां थी और उन्होंने एक समय कैकेयी को उनकी सेवा से बड़े प्रसन्न थे, उन्हें वर दिया था कि जो भी तो मानोगे वो मैं दूंगा। शास्त्र में कहा गया है भगवान शब्द उनके लिए उपयोग किया जा सकता है जिनमें 6 प्रकार के गुण हों एक साथ, ऐश्वर्य समाजस्य ज्ञान पर 6 गुणों में एक है वैराग्य। तो रामचंद्र जी की राज्य अभिषेक की तैयारी हो रही थी, अयोध्या की कन्याएं सब सजी हुई थी, और कैकेयी ने कहा अपने पति से तुम्हें याद है तुमने कहा था मेरी इच्छा को पूरा करोगे, तो आज मैं ये इच्छा प्रकट करना चाहती हूँ। और जब भगवान राम को पिता ने कहा जाओ वनवास में, पिता बेटे ने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। ये नहीं कहा कि तो क्या कहेंगे, सब ये सोच रहे हैं कि मुझे ये राज्य प्राप्त होने वाला है। तुरंत ही उन्होंने पिता के आदेश का पालन किया। तो भगवान राम के नई लीलाएं हैं जिन्हें आप ड्रामा में देखोगे। और भगवान राम जब लौटे 14 साल के वनवास के पश्चात अयोध्या में गए, भाई भारत राजे कर रहे थे उनकी चप्पलों उनके बिहार पर, उन सब ने अयोध्या के सारे मंदिर में उनका स्वागत किया। तो भगवान राम का राज्य इतना सुंदर था कि किसी प्रकार कर्कश नहीं था समाज में। कहा गया है भागवतम में कि हालांकि भगवान राम का राज्य चैत्य युग में था तो लोगों को ऐसा सुख अनुभव हो रहा था जैसे वो हैं सतयुग में। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि जिस प्रकार राम भगवान राम के समय उनके राज्य के समय चैत्य युग होते हुए लोगों को ये अनुभव हो रहा था कि सतयुग है, उसी प्रकार इस कलयुग में भी आप सतयुग का वातावरण अनुभव कर सकते हो अगर आप ये हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करो। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, ये बताओ कि कलयुग में कैसे लोगों का उद्धार होगा? भगवान के जो भक्त हैं वो समाज के शुभ चिंतक हैं, उनकी सदा यह इच्छा रहती है कि लोग सुखी बने। तो परीक्षित महाराज चिंता में थे कैसे कलयुग में लोगों का उद्धार होगा। तो उन्होंने पूछा सुखदेव गोस्वामी से। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कले दो से निर्देश राजा, हे राजा कलयुग में दोष ही दोष है, प्रेम गुण है इस कलयुग में, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संघर्ष परम जय, वो है भगवान के नामों का उच्चारण। तो भगवान के नामों के उच्चारण से कलयुग में भी आप सतयुग का वातावरण अनुभव कर सकते हो अगर हम सब हरि नाम को अपनाएं और हरि नाम की महिमा का प्रचार करें। तो हम सबको इस रामनवमी के शुभ अवसर पर ये निर्णय करना चाहिए कि हमें हरि नाम को अपनाना है और हरि नाम की महिमा का प्रचार करना है। भगवान राम जब लौटे, जब उनका शासन आरंभ हुआ, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को बांट दी। ब्राह्मणों को सारी संपत्ति बांट दी और सीता देवी ने केवल एक नथनी रखी थी अपने लिए, बाकी सारे गहने ब्राह्मणों को बांट दिए। ब्राह्मणों ने स्वीकार किया। पर ब्राह्मण इतने प्रसन्न थे भगवान राम के शासन से कि उन्होंने पहले तो ये सब गहना स्वीकार कर लिया, फिर बाद में उन्होंने क्या कहा, हम आपकी सेवा से इतने प्रसन्न हैं कि हमें ये गहने नहीं चाहिए। और ये गहने उन्होंने भगवान राम और सीता को उल्टा दिया। आज के बाद उन्होंने आप ये उम्मीद रख सकते हो। हाँ, सबसे पहले आपकी नेता ना आपकी संपत्ति कभी बांटेंगे, है ना? और भगवान राम और सीता ने सारी संपत्ति बांट दी। और फिर ब्राह्मण ने स्वीकार किया और फिर ब्राह्मण ने कहा, हमें आपका प्रेम प्राप्त हो रहा है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं, और सब उठा दिया। राम राज्य के समय समाज में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था और मृत्यु के समय भी, और आपका मृत्यु का समय भी आप खुद चुन सकते थे। अगर हाँ जी छूट दी जाए आपको कि मृत्यु का समय आप खुद चुन सकते हो, तो मुझे तो पूरा यकीन है सारे शमशान घाट बंद हो जाएंगे। कि विसर्ग नहीं है, हम तैयार नहीं है, थोड़ी देर और थोड़ी देर और स्वयं राम के समय खुद ही खुद मृत्यु के समय सब सुन लेते। भगवान राम स्वयं देखते थे कि हर प्रकार का सुख प्राप्त हो उनके प्रजा को, प्रजा को अपनी उलाद के समान पाल रहे थे। ये नहीं कि कभी प्रजा को प्रजा को मिलती नहीं, प्रजा को उलाद के समान पाल रहे थे और खुद देखते थे कि किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। अयोध्या की सड़कों की सफाई भी खुद देखते थे और उस समय अयोध्या की सड़कों को गुलाब के पानी से रोज धोया जाता था, तो अंदाजा लगा सकते हो कितना धनी राज्य था। तो आज के वातावरण में कई लोग राम राज्य की चर्चा करते हैं, पर अगर आपको असली राम राज्य चाहिए तो हमें हरे कृष्ण मंत्र को अपनाना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र के उच्चारण में भगवान कृष्ण का उच्चारण गुणगान करते हैं और भगवान राम का भी गुणगान करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी की वो भविष्यवाणी थी कि विश्व के कोने कोने में ये हरि नाम पहुंचेगा और भक्तिवृंद स्वामी प्रभुपाद के प्रयास से ये हरि नाम जो है आज विश्व के कोने कोने पहुंच गया है। आप भक्तों को खुशी होगी ये जानकर कि आज से 15 साल पहले आपका राधा पार्थसदी मंदिर का उद्घाटन हुआ। तो मैं संक्षेप में इस विषय की भी चर्चा करना चाहता था। जैसे आप जानते हो प्रभुपाद जीवन के गुरु महाराज ने आदेश दिया था, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देश में। प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया, इतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई कोई, और 1965 में अमेरिका गए पानी के जहाज में। तो 1965 में अमेरिका जाने से पहले प्रभुपाद जी का काफी गहरा संबंध था आपके दिल्ली शहर के साथ। प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में निवास कर रहे थे वृंदावन में, बकायदा दिल्ली आते थे अपनी किताबों को प्रकाशित करने के लिए। 1955 में अनेक स्थानों में वो रह रहे थे। वो एक समय था कि प्रभुपाद जी के पास कोई स्थान ही नहीं था दिल्ली में रहने के लिए। प्रभुपाद जी ने जब पश्चिम देश में कृष्णा भक्ति की स्थापना की, फिर उनका मन ये था कि भारत में लौट कर भारतवासियों को भी असली संदेश देना चाहिए, क्योंकि पश्चिम देश में जाने से पहले प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया था, जितना सहयोग मिलना चाहिए था उतना सहयोग प्राप्त नहीं था। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि भारतवासियों को भी असली शिक्षा दी जाए। तो प्रभुपाद जी भारत में लौटे और भारत के जाने बड़े शहर हैं बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता, उन्होंने बड़ा बड़ा पंडाल किया। दिल्ली में एक बड़ा पंडाल हुआ था LIC ग्राउंड में आपके नॉर्थ प्लेस में, और प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि आप दिल्ली में जो दिल्ली भारत की राजधानी है और विश्व का एक बड़ा प्रसिद्ध शहर माना जाता है, यहाँ एक सुंदर मंदिर होना चाहिए। और इस मंदिर के निर्माण से पहले इसके कई मंदिर थे दिल्ली में। एक मंदिर था आनंद निकेतन में, फिर अगला मंदिर था बंगाली मार्केट में। बंगाली मार्केट में मंदिर था और उन दिन हमें इमरजेंसी का समय था, तो हमारा मालिक मकान था वो गवर्नमेंट का अधिकारी था, वो चाहता था मकान को खाली करें, छोटा सा छोटी सी कोठी थी 3 कमरों की। हमने कहा हमें थोड़ा समय दीजिए, तो उसने राधा पर्द साहब की मूर्ति जिनका दर्शन प्राप्त करते हो उन्हें उठाकर सड़क में फेंक दिया। फिर हमें बड़ी मुश्किल से वापस लेकर आए। और फिर हम उस स्थान ढूंढ रहे थे, फिर स्थान लाजपत नगर में प्राप्त हुआ, और फिर लाजपत नगर के बाद मंदिर गया केरा कैलाश। और प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि दिल्ली में भी सुंदर मंदिर बनाया जाए, तो काफ़ी बड़ा प्रयास था जमीन प्राप्त करने के लिए। और फिर 15 साल पहले ये आपके राजा पार्टी सभी मंदिर का उद्घाटन किया था, और गांव को उद्घाटन करने आए थे उस समय के प्रधानमंत्री बात कर दी। तो आप सबके संयोग से ये मंदिर बना है, खास करके हमारे वेला व्यास श्री कर गया, और कई भक्तों ने बहुत मेहनत की जिसके उनके सहयोग से स्थान बना। एक हमारे भक्त दवे जी जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी उठा ली थी कंस्ट्रक्शन के लिए, और एक आर्किटेक्ट थे हमारे कन्वेंजे जी। हम कुछ दिन कल हमारे एक बड़े पुराने भक्त आए थे सुराग, जिन्होंने बॉम्बे का मंदिर डिज़ाइन किया था, तो उन्होंने ये मंदिर पहली बार देखा परसों, तो कह रहे थे दिस टेम्पल इज सो आर्टिस्टिक आई कैन नॉट बिलीव, कह रहे थे ये मंदिर इतना आर्टिस्टिक, और खुद बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं। तो कन्वेंजे जी जो कि आर्किटेक्ट थे, उन्होंने ये वो पूरे प्रोजेक्ट का सेवा भाव से किया था, और उन्होंने इतना समय लिया, इतना दिमाग लगाया। और ये स्थान जहाँ ये मंदिर बना है, पहले इस स्थान का नाम था गोवर्धन, क्योंकि हम काफ़ी पत्थर थे, तो हम सबके सहयोग से मंदिर बना है। और इस मंदिर के प्रचार से कई और मंदिर अभी बन गए हैं, जैसे आप जानते हो दिल्ली शहर में कई मंदिर हैं, नोएडा में मंदिर है, पंजाबीबाग, गाजियाबाद, फरीदाबाद, पंचशील, भादुरगढ़, पंजाबीबाग, रोहिणी, द्वारका, और किधर गुरखा, तो कई मंदिर बने हैं राजा पार्थिव साथी जी के पास। तो आप सब आज इस शुभ अवसर पर भगवान से ये प्रार्थना करो कि आप सबके हृदय में शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, और जो हमारे अनर्थ हैं वो समाप्त हो जाए, अनर्थ निवृत्ति ये संभव हो सकती है हरि नाम के उच्चारण के साथ। तो चैतन्य महाप्रभु जी जो स्वयं भगवान हैं, उन्होंने इस कलयुग में भगवत प्राप्ति के लिए बड़ा सरल साधन दिया है। पहला आदेश था चैंट हरे कृष्णा। तो आप सब जो उपस्थित हो, सबसे निवेदन है महामंत्र का जाप कीजिएगा, साथ में उन्होंने कहा गीता भागवतम को पढ़िए, साथ में साधु संत, जब आप शास्त्र पढ़ते हो ज्ञान बढ़ता है, भक्तों की संगत में रहते हो भक्ति की भावना बढ़ती है, इसलिए शास्त्र में कहा गया है साधु संग सर्वशास्त्र का दावा मात्र साधु संग सर्वस्व लिखा है। शास्त्र में कहा गया है एक पल के लिए भी अगर आपको भक्तों की संगत मिलेगी तो आपका जीवन सफल हो सकता है। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि भारतवासी गंभीरता के साथ इस शिक्षा को अपनाएं। ठीक है, महाप्रभु जी ने स्वयं आदेश दिया है कि हर व्यक्ति जिसने भारत भूमि में जन्म लिया है उसे कहा उद्धार करना चाहिए और दूसरों को उधार। तो सबसे निवेदन है कि हरि नाम को अपनाइए, गंभीरता के साथ कृष्ण भक्ति को स्वीकार कीजिएगा और अपने जीवन को सफल बनाइएगा। बोलिए सर हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा,
कृष्णा कृष्णा,
कृष्णा कृष्णा,
हरे हरे,
हरे हरे,
हरे राम,
हरे राम,
हरे राम,
हरे राम,
राम राम,
राम राम,
हरे हरे।